एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जहां आप सोचिए ब्लैकबोर्ड पर खींची कुछ लकीरें दुनिया का इतिहास बदल सकती हैं।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं स्टैनिस्लाव उलम की आत्मकथा एडवेंचर्स ऑफ अ मैथमेटिशियन की, मतलब एक गणितज्ञ के साहसिक कारनामे।
सही, और ये सिर्फ गणित की किताब नहीं है, ये एक इंसान, एक गणितज्ञ के जीवन की, उसके विचारों की कहानी है, और साथ ही ये 20वीं सदी के उथल पुथल भरे दौर की भी कहानी है।
हाँ, और ये स्टैनिस्लाव उलम थे कौन, मतलब उनका परिचय क्या है?
स्टैनिस्लाव मार्सिन उलम 1909 से 1984 तक पोलैंड में जन्मे थे, बाद में पोलिश अमेरिकी गणितज्ञ बने, और उनकी रेंज बहुत बड़ी थी। सेट थ्योरी, टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल फिजिक्स, कई चीजों में उनका काम था।
कमाल है, पर सबसे खास बात ये थी कि वो एक प्योर मैथमेटिशियन भी थे और एक प्रैक्टिकल साइंटिस्ट भी। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है,
और शायद यही चीज उनकी कहानी को आज भी इतनी दिलचस्प बनाती है ना?
बिल्कुल, ये किताब दिखाती है कि कैसे गणित के वो जटिल अमूर्त विचार अचानक दुनिया की बड़ी घटनाओं से जुड़ जाते हैं।
जैसे कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट।
हाँ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, फिर हाइड्रोजन बॉम्ब का बनना, यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस की शुरुआत।
सोचकर ही अजीब लगता है, मतलब आपके दिमाग में आया कोई आइडिया और वो दुनिया बदलने की ताकत रख ले।
सही कहा, ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है ज्ञान की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी के बारे में, खासकर तब जब आपकी जिज्ञासा आपको ऐसे रास्तों पर ले जाए जिनके अंजाम खतरनाक हो सकते हैं।
तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, उलम की ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई?
उनकी शुरुआत हुई पोलैंड के लवोव शहर से। उस समय ये शहर आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का एक गढ़ था।
अच्छा।
उनका परिवार भी पढ़ा लिखा सुसंस्कृत पोलिश यहूदी परिवार था, और बचपन से ही उलम को गणित, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, इन सब में बहुत रुचि थी।
और सुना है लवोव का वो माहौल भी कुछ खास था, कोई लवोव स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स और एक कैफे का जिक्र आता है।
हाँ हाँ बिल्कुल, वो माहौल उनके बनने में बहुत अहम था। स्टीफन बानाख, ह्यूगो स्टेनहॉस जैसे बड़े बड़े गणितज्ञ थे वहां, लेकिन स्कॉटिश कैफे, अरे वो तो एक अलग ही दुनिया थी।
कैसा था वो कैफे?
आप सोचे, एक कैफे है जहां मैथमेटिशियन घंटों कॉफी पीते हुए गणित पर बहस कर रहे हैं,
मेजों पर ही लिख रहे हैं।
हाँ, नैपकिन पर, टेबल पर ही फॉर्मूला लिख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उनकी एक मशहूर स्कॉटिश बुक भी थी।
स्कॉटिश बुक?
हाँ, एक मोटी सी नोटबुक, उसमें वो लोग अनसुलझी प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस लिखते थे। मतलब गणित वहां कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं था,
एक तरह की कला थी, सोशल एक्टिविटी थी।
बिल्कुल, मजेदार क्रिएटिव चीज थी, और इसी माहौल में उलम का शुरुआती काम हुआ, सेट थ्योरी में, टोपोलॉजी में।
लेकिन ये माहौल, ये शांति ज्यादा टिकी नहीं शायद?
नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। यूरोप पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे, नाजीवाद का उदय हो रहा था, और 1938 में उलम को अमेरिका से एक इनविटेशन मिला।
अच्छा।
और ये फैसला, ये उनकी जान बचाने वाला साबित हुआ। बाद में उनका पूरा परिवार होलोकॉस्ट का शिकार हो गया। ये उनकी दूरदर्शिता कहें या किस्मत।
पोलैंड के उस माहौल से निकलकर अमेरिका पहुंचना, ये तो बड़ा बदलाव रहा होगा उनके लिए।
हाँ, जैसे कल्चर शॉक कहते हैं ना, वो हुआ होगा। प्रिंसटन, हार्वर्ड जैसी जगहों का माहौल यूरोप के कैफे से बहुत अलग था, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ज्यादा फॉर्मल।
उन्हें एडजस्ट करना पड़ा होगा।
बिल्कुल, और यहीं उनकी मुलाकात हुई एक और महान गणितज्ञ से, जॉन वॉन न्यूमन।
वॉन न्यूमन, इनका नाम तो बहुत सुना है, ये दोस्ती कैसी थी?
अरे बहुत ही अहम, ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, एक जबरदस्त इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप थी। वॉन न्यूमन की बुद्धि तो कमाल की थी।
जैसे कि
बिजली की तेजी से कैलकुलेशन करना, फोटोग्राफिक मेमोरी, एक साथ कई फील्ड्स में महारत। उलम हमेशा उनसे हैरान रहते थे, और दोनों ने मिलकर बहुत महत्वपूर्ण काम किया।
और फिर आया 1943 और वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का बुलावा, ये शायद सबसे बड़ा मोड़ था।
हाँ यकीनन, हांस बेथे का एक सीक्रेट इनविटेशन लॉस अलामोस, न्यू मैक्सिको जाने के लिए।
लॉस अलामोस, रेगिस्तान के बीच वो सीक्रेट शहर।
बिल्कुल, शुद्ध गणित की दुनिया से निकलकर सीधा एटम बॉम्ब बनाने के हाई प्रेशर, सीक्रेट और नैतिक रूप से बहुत जटिल काम में।
वहां का माहौल कैसा था? ओपेनहाइमर का नेतृत्व, दुनिया के बेस्ट दिमाग एक जगह।
वो जगह ही गजब थी। एक तरफ तो जबरदस्त बौद्धिक ऊर्जा थी, सब लोग एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती हल करने में लगे थे,
और दूसरी तरफ,
दूसरी तरफ उस काम के भयानक नतीजों का डर, उसका नैतिक बोझ। उलम ने वहां इम्प्लोजन मेथड पर काम किया, प्लूटोनियम बम के लिए जो जरूरी था, हाइड्रोडायनामिक्स पर कैलकुलेशन की।
लेकिन ये नैतिक बोझ, ये तो महसूस होता ही होगा कि आप जो बना रहे हैं वो कितनी तबाही ला सकता है।
हाँ बिल्कुल, उलाम और बाकी साइंटिस्ट भी देशभक्ति, वैज्ञानिक उत्साह और गहरी चिंताओं के बीच फंसे हुए थे। उनके ब्लैकबोर्ड के समीकरण अब जान लेने वाले हथियार बन रहे थे। इसी दौर को उलम ने बाद में कहा, विज्ञान की मासूमियत का खो जाना।
गहरा असर पड़ा होगा उनपे।
बहुत। जब अमूर्त आइडियाज इतनी भयानक हकीकत बन जाएं, तो असर तो पड़ता ही है।
युद्ध खत्म हुआ, बम बन गया, फिर उलम किस तरफ मुड़े? वापस प्योर मैथ्स।
कुछ समय के लिए हाँ, लेकिन फिर लॉस एलामोस ने उन्हें वापस बुला लिया। अब एजेंडा था हाइड्रोजन बम, द सुपर
एच बम।
हाँ, और यहां उनका सामना हुआ एडवर्ड टेलर से। टेलर एच बम बनाने के बड़े पैरोकार थे और उलम के साथ उनके मतभेद गहरे थे।
मतभेद किस तरह के? साइंटिफिक?
साइंटिफिक भी थे और कुछ हद तक पर्सनालिटी क्लैश भी था। उलम ने अपनी कैलकुलेशन से यह दिखाया कि टेलर का जो शुरुआती डिजाइन था ना एच बॉम्ब का,
हाँ,
वो असल में काम नहीं कर सकता था। अब ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि प्रोजेक्ट पर प्रेशर बहुत था।
तो फिर हल कैसे निकला?
यही वो टेलर उलम डिजाइन आता है।
बिल्कुल, उलम ने प्रॉब्लम तो बताई लेकिन सोल्यूशन में भी बड़ा रोल निभाया टेलर के साथ मिलकर। हालांकि रिश्ते तनाव भरे ही रहे, उन्होंने एक नया तरीका निकाला।
क्या था वो तरीका?
उसे आज टेलर उलम डिजाइन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक छोटे एटम बॉम्ब के धमाके से जो रेडिएशन निकलता है,
हाँ,
उसका इस्तेमाल करके दूसरे ज्यादा शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर फ्यूल को दबाया और जलाया जाता है। इसी डिजाइन ने थर्मोन्यूक्लियर हथियार बनाना मुमकिन किया।
ये तो हुई तबाही मचाने वाली ताकत की बात।
लेकिन इसी दौरान उलम ने एक और चीज भी बनाई जो आज हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, मोंटे कार्लो मेथड।
हाँ हाँ, मोंटे कार्लो, और इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है।
क्या कहानी है?
उलम उस समय एक सीरियस दिमागी बीमारी से उभर रहे थे, एंसेफलाइटिस। हाँ। उन्हें डर था कि कहीं उनकी सोचने की शक्ति कमजोर ना हो गई हो।
अच्छा।
तो इसी दौरान वो ताश का खेल होता ना सॉलिटेयर, वो खेल रहे थे।
हाँ।
और खेलते खेलते उन्हें एक आइडिया आया।
सॉलिटेयर से?
क्या आइडिया?
उन्होंने सोचा कि सॉलिटेयर में जीतने की संभावना पता लगाने के लिए क्यों ना गेम को कई बार रैंडम तरीके से खेलकर देखा जाए।
बस इसी आइडिया को उन्होंने वॉन न्यूमन और निकोलस मेट्रोपोलिस के साथ मिलकर डेवलप किया।
मतलब कैसे काम करता है ये?
इसका फंडा ये है कि जटिल समस्याओं को, जिनमें बहुत सारे वेरिएबल हों, उन्हें हल करने के लिए कंप्यूटर से रैंडमनेस यानी यादृशिकता पैदा करके उसका इस्तेमाल किया जाए। नाम मजाक में जुए के शहर मोंटे कार्लो पर रखा गया।
और इसका असर क्या हुआ?
अरे, इसने तो क्रांति ला दी। फिजिक्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मौसम का अनुमान लगाना, न जाने कितने फील्ड्स में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने और सिम्युलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा।
कंप्यूटेशनल साइंस की नींव बना।
बिल्कुल, शुरुआती कंप्यूटरों जैसे मैनियाक पर इसे चलाकर रिसर्च की स्पीड कई गुना बढ़ गई।
तो अगर हम उलम की पूरी विरासत को देखें, प्योर मैथ्स, एटॉमिक हथियार, मोंटे कार्लो, तो इसका सार क्या है?
देखिए, उनकी विरासत मल्टी लेयर्ड है। वो प्योर और अप्लाइड मैथ्स के बीच एक पुल की तरह थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट सोच रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है।
कंप्यूटेशनल तरीकों के तो वो पायनियर थे ही।
हाँ, और सबसे अहम, वो विज्ञान की बदलती भूमिका पर सोचने वाले साइंटिस्ट थे। विज्ञान की बढ़ती ताकत और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां। उन्होंने गणित को कभी सूखा सब्जेक्ट नहीं माना।
उनके लिए वो एक एडवेंचर था।
हाँ, पैटर्न ढूंढने की कला, एक रोमांचक खोज, और उनके यही आइडियाज बाद में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी प्रभावित करने वाले थे।
ये तो उनके काम की बात हुई, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर उनके अपने विचार, उनके वैल्यूज क्या थे?
उलम के लिए गणित सिर्फ फॉर्मूला या प्रूफ नहीं था, वो इसे क्रिएटिव आर्ट मानते थे, एक एडवेंचर। उनका मानना था कि असली खोज इंट्यूशन से होती है, एस्थेटिक सेंस से होती है, पैटर्न पहचानने से होती है।
प्रूफ तो बाद की बात है।
हाँ, प्रूफ तो बस उस आइडिया को साफ सुथरा लिखने का तरीका है।
हाँ।
उनका एक कोड भी है कुछ ऐसा कि कितना इरिटेटिंग होता है उन रिजल्ट्स को लिखना जिन्हें आप जानते हैं कि वो सच हैं।
हाँ, ये इसी सोच को दिखाता है।
बिल्कुल। और दूसरी अहम चीज थी कोलैबोरेशन यानी सहयोग। स्कॉटिश कैफे से लेकर लॉस एलामोस तक, उन्होंने देखा कि साइंस अकेले जीनियस का काम नहीं बल्कि एक सोशल एक्टिविटी है।
वॉन न्यूमैन के साथ उनकी पार्टनरशिप इसका उदाहरण है,
बेहतरीन उदाहरण है। और वो प्योर और अप्लाइड मैथ्स के बीच की दीवार को भी नहीं मानते थे।
हाँ, वो कहते थे आर्टिफिशियल है।
उनका अपना जीवन ही इसका सबूत था, कैसे सेट थियरी जैसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एटम बॉम्ब की कैलकुलेशन में काम आ गया। वो अक्सर हैरान होते थे कि कैसे ब्लैकबोर्ड पर लिखी चंद लकीरें दुनिया बदल सकती हैं।
इंट्यूशन और पैटर्न रिकॉग्निशन पर उनका कितना जोर था?
बहुत ज्यादा। वो मानते थे कि असली समझ नियमों से ज्यादा पैटर्न को पहचानने से आती है। इसी सोच ने उन्हें बाद में AI और सेलुलर ऑटोमेटा जैसे फील्ड्स में काम करने को प्रेरित किया।
लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, हथियारों के नैतिक पहलू से वो कैसे जूझे?
वो इसे लगातार जूझते रहे। एक तरफ गणित की इस ताकत पर हैरानी थी, दूसरी तरफ हथियार बनाने का नैतिक बोझ। विज्ञान की मासूमियत का खो जाना ये उनकी इसी कश्मकश को दिखाता है।
उनकी कहानी में कई मोड़ आए, अगर तीन सबसे अहम टर्निंग पॉइंट्स चुनने हो तो वो कौन से होंगे?
अगर वो न आते तो ये सिर्फ जिंदगी बचाने वाला फैसला नहीं था।
बिल्कुल,
इसने उनके पूरे भविष्य की दिशा तय कर दी।
बिल्कुल।
और दूसरा,
लॉस एलामोस का बुलावा।
हाँ, 1943 का वो सीक्रेट इन्विटेशन। ये उन्हें प्योर मैथ्स की दुनिया से निकालकर सीधे 20वीं सदी के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट में ले आया। यहां उन्हें अपनी सोच बदलनी पड़ी, नैतिक सवालों से जूझना पड़ा। इसका असर बहुत गहरा था।
और तीसरा टर्निंग पॉइंट?
तीसरा शायद दो चीजों का संगम है जो युद्ध के बाद हुआ, एच बॉम्ब डिजाइन में उनका रोल और मोंटे कार्लो मेथड का जन्म।
अच्छा, दोनों एक साथ?
हाँ, क्योंकि दोनों उनके प्रभाव की चौड़ाई दिखाते हैं। एच बॉम्ब वाले काम ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी और हाई लेवल फिजिक्स में स्थापित किया, भले ही वो विवादास्पद रहा।
और मोंटे कार्लो?
वो इतना इंपॉर्टेंट था, पर दूसरी दिशा में, बीमारी से उभरते हुए, ताश के खेल से प्रेरणा लेकर कैलकुलेशन का एक नया तरीका ईजाद करना, ये क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का कमाल का मेल था। एक विनाश से जुड़ा, दूसरा रचना से, यही उनके जीवन की जटिलता है।
वॉलम की कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, इसमें हम सबके लिए कुछ सबक हैं, कुछ ऐसी बातें जिनसे आज भी जुड़ा जा सकता है।
बिल्कुल, सोचिए जरा, एक रिफ्यूजी जो दुनिया का टॉप साइंटिस्ट बना, कल्चर शॉक झेला, भारी दबाव में काम किया, नैतिक दुविधाओं का सामना किया, गंभीर बीमारी से लड़ा। ये अनुभव विस्थापन, हाई स्टेक काम, नैतिक चुनाव, मुश्किलों पर जीत, ये सब कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से भी जुड़ते हैं।
तो क्या सबक ले सकते हैं हम उनकी जिंदगी से?
कई सबक हैं। पहला, जिज्ञासा और पैटर्न पहचानने की अहमियत, ये किसी भी फील्ड में काम आती है। दूसरा, सहयोग की ताकत। स्कॉटिश कैफे हो या लॉस एलामोस, अलग अलग नजरिए मिलकर ही कमाल करते हैं।
तीसरा,
जिंदगी के अप्रत्याशित मोड़, आप कहां से शुरू करते हैं और कहां पहुंच जाते हैं। सही। चौथा, अपने काम के नैतिक पहलुओं को समझना, उनसे भागना नहीं। पांचवा, लचीलापन, नए माहौल में ढलना, मुश्किलों से उबरना।
और आखिर में?
आखिर में ये याद रखना कि जीनियस भी इंसान होते हैं। उलम अपनी किताब में साथियों के किस्से सुनाते हैं, दोस्ती, जलन, मजाक, कमजोरियां, ये जीनियस के मानवीय पक्ष को दिखाता है।
इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें तीन सबसे जरूरी बातें चुननी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक, तो वो क्या होंगी?
भावनात्मक स्तर पर मुझे लगता है वो है विज्ञान की मासूमियत का खो जाना। ये एहसास कि वर्ल्ड वॉर के बाद साइंटिफिक खोज हमेशा के लिए नैतिक जिम्मेदारी और सत्ता के खेल से जुड़ गई। वैज्ञानिकों को अपने क्रिएशन के नतीजों का सामना करना पड़ा। उलम ने इसे बहुत करीब से महसूस किया।
और बौद्धिक स्तर पर?
बौद्धिक टेकअवे ये है कि गणित सिर्फ सूखा लॉजिक नहीं है, ये कला है। उलम का जीवन दिखाता है कि गणितीय खोज अक्सर इंट्यूशन, पैटर्न रिकॉग्निशन और क्रिएटिव सोच से होती है। प्रूफ तो बाद में आता है, ये गणित को ज्यादा मानवीय और रोमांचक बनाता है।
और एक सार्वभौमिक सबक जो हम सबके काम आए,
वो है सहयोग और खुले संवाद की ताकत। स्कॉटिश कैफे की बहस हो या लॉस एलामोस की टीम, उलम का अनुभव यही दिखाता है कि जब अलग अलग सोच वाले लोग खुलकर बात करते हैं तो कमाल के नतीजे निकलते हैं।
ये बात आज किसी भी टीम, किसी भी फील्ड पर लागू होती है।
स्टेनिस्लाव उलम की कहानी हमें याद दिलाती है कि विचारों में कितनी ताकत होती है और उस ताकत के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये सोचने पर मजबूर करती है। आज के दौर में जब AI जैसी टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया बदल रही है, क्या हम उलम के अनुभवों से कुछ सीख सकते हैं? कैसे हम इन नई ताकतों को समझें और उन्हें सही दिशा दें?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।